तो आज अभिराम ठाकुर का, अभिराम गोपाल ठाकुर, श्री अभिराम गोपाल ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। पहले इनके बारे में हम पढ़ देते हैं समाधि पुस्तक से, उसके बाद फिर ये भागवत का श्लोक लेंगे। तो ब्रजलीला में अभिराम ठाकुर द्वादश गोपालों में से एक हैं और बलराम जी के सखा हैं, भगवान बलराम के सखा, द्वादश गोपालों में से का नाम आता है। और गौर लीला में भी ये नित्यानंद प्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त हैं। तो एक दिन सख्य रस में अभिराम ठाकुर ने बांसुरी बजाई एक ग्वाले की तरह, और जंगल में विचरण करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की काठ देखी, लकड़ी जिसको लट्ठा देखा उन्होंने, जिसको 16 लोग, कम से कम 16 लोग उसको उठावा, उसके लिए 16 लोग चाहिए होते थे उठाने के लिए। और अभिराम ने ये लट्ठा लिया और उससे बांसुरी बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। और अभिराम गोपाल ग्वाले के भाव में उन्होंने एक साथ में, उनके पास छड़ी होती थी, तो बुल विप लिखा है, जैसे बैल को शायद मारते होंगे, चाबुक, उसका नाम था जय मंगल। कहने का अर्थ यह है कि जिसको भी एक चाबुक पड़ता वो कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो जाता। रीवो चाहिए आपको एक चाबुक, यहाँ एक चाबुक रखना चाहिए प्रभुपाल के पास, तो जो भी आएगा और जैसे ही दंडवत करके उठेंगे ऊपर से एक चाबुक पड़ेगा, उसके बाद एकदम नाचने लग जाए वो, हरी बोल। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा भक्त बनाना, भक्ति वृक्ष और नाना प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम इतनी यही पे सबको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इनके पास वो चाबुक थी और श्रीनिवास आचार्य को बता रहे हैं कि इसी तरह से ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, उनको भी अभिराम गोपाल ठाकुर का चाबुक पड़ा था। अभिराम गोपाल एक बहुत ही शक्तिशाली आचार्य हुए हैं गौड़िया वैश्य संप्रदाय में, और नास्तिक और निंदुक जो लोग हैं उनको देखकर डर के भागते थे, और नित्यानंद प्रभु के बहुत ही अच्छे प्रचारक थे, सभी शास्त्रों में विद्वान थे, संगीत में और गायन नृत्य कला में दक्ष थे। और अभिराम ठाकुर ने अपने घर का उपयोग किया प्रचार के लिए, वैश्यों की सेवा के लिए, सोने के लिए नहीं, कम सोते थे घर पे, विश्राम ही कुछ करते होंगे, लेकिन बाकी समय वो प्रचार करते थे। और घर पे जो भक्त लोग आते थे, तीर्थयात्री वैष्णव लोग आते थे, उनकी वो सेवा करते थे, और उनके पूरे घर में कीर्तन चलता था, कृष्ण कथा चलती थी, और उनके घर में शुद्ध भक्त आया करते थे। उनकी समाधि 64 समाधि इलाके में है, और ये द्वादश गोपालों में से एक है, श्रीदाम सखा। ठीक है, हरे कृष्ण, श्री अभिराम गोपाल ठाकुर की, उनका तिरुभाव दिवस आज, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 31। स्वदम सयो धृत्य महीम निमग्ना स उत्थिता समरुचे रसायः, तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् सुनाव संदीपित तीव्रमन्युः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। भगवान भरा ने बड़े ही आसानी से पृथ्वी को अपनी डाड़ों में ले लिया और वह उसे जल से बाहर निकाल लाए, इस तरह वह अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तात्पर्य, श्रील जी गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों से भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ है। वराह का ये विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जनक जन्म महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोक प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपर्युक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाव रखते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप विदुर के समक्ष रखा। तो ये अध्याय का शीर्षक है वराह भगवान का प्राकट्य, और संवाद चल रहा है विदुर जी और मैत्र मुनि के बीच में, और यहाँ पर भगवान वराह के आविर्भाव के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहे हैं। आगे चलकर हम देखेंगे 16वें अध्याय में इन्हीं अवतारों के बारे में, इन्हीं अवतार के बारे में, भगवान वराह के अवतार के बारे में विस्तार से वर्णन प्राप्त हुआ। तो ये जो अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह से सागर की लहरें, समुद्र की लहरों को गिना नहीं जा सकता है। इस तरह से भगवान के अवतार को, भगवान के अवतारों को गिनना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। श्री जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा है दशावतार स्तोत्र में भगवान वराह का गुणगान करते हुए, वसती दशन शिखरे धरणी तब लग्ना, शशनी कलंकले व निमग्ना, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे। तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए श्रील जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान केशव की जय हो जो शूकर के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसे प्रतीत हो रही थी, चंद्रमा में जैसे कलंक दिखता है कई बार, है ना, दिखता है हमेशा, तो वैसे ही लग रहा था। भगवान वराह ने जो पृथ्वी को उठाया था अपने दाढ़ों के बीच में, ये शुकर रूप है, साधारण सुअर नहीं है, जैसे कल भी हम प्रभु से सुन रहे थे, साधारण सुअर ये ग्रामीण सुअर नहीं है, मल खाने वाला बीड़ वराह नहीं है, बीड़ वराह मतलब जो कि मल खाने वाला, ये है जंगल का सुअर, शुकर जिसको कहते हैं। तो ये शुकर रूप धारण किया भगवान ने। भगवान के अवतार भी देखिए अद्भुत अवतार हैं, और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई अपना मूल रूप नहीं है, अलग अलग रूप लेते रहते हैं, वास्तविकता तो ये है कि वो निराकार है। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है, क्योंकि वो बार बार रूप बदलते रहते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि असली सत्य तो क्या है, ब्रह्म सत्य है, बाकी जितने भी रूप देख रहे हैं ये असत्य हैं, ये कुछ समय के लिए हैं, लेकिन ये जितने भी रूप हैं ये सब शाश्वत रूप हैं। अगर ये रूप भौम लीला में भी, भौम जगत में भी ये प्रकट होते हैं तो वो शाश्वत रूप हैं। वैकुंठ जगत में ये रूप जो है चतुर्भुज विश्व रूप में प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भौम जगत में ये नाना प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं। ठाकुर भक्तिविनोद ने बहुत सुंदर लिखा है, एक पुस्तक लिखी उन्होंने 1885 में, ये पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है कृष्ण संहिता, और उसे बहुत सुंदर वर्णन किया है ठाकुर भक्तिविनोद ने किन कारणों से भगवान जो हैं अलग अलग रूप धारण करते हैं। क्या बोलते हैं, यद्यत भागवतो जीवस तत्त भागवतो हरि ही अवतीर्ण स्वसत्या सह क्रीड़ती व जनई सहा। जब बद जीव नाना प्रकार के रूप धारण करता है अपने प्रकृति के अनुसार, परम भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के अनुसार वो भी अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। यानी कि जीव तो बद अवस्था के कारण और प्रकृति के अधीन होकर 84 लाख योनि में प्रवेश करता है। लेकिन साथ में यहां भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान भी अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभवामी आत्ममाया, जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं अपनी आत्ममाया के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान जो है नाना अवतार लेते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम, तो नाना प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और हम जैसे बद जीव आत्माओं का साथ देते हैं और इंतजार करते हैं कि कब हम भी इन लीलाओं में प्रवेश करेंगे, भाग लेंगे। और आगे बड़ा सुंदर बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, मत्स्येषु मत्स्य भावो ही कच्छपे कूर्म रूप कहा मेरु दंडयुते जीवे वराहा भाववान हरि। बोलते हैं कि जब जीव मत्स्य का रूप धारण करता है, मत्स्य का रूप यानी मत्स्य का शरीर धारण करता है, उस समय भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, समुद्र में मत्स्य अवतार लेते हैं। ये कोई एवोल्यूशनरी साइकिल नहीं है, डार्विन का थ्योरी नहीं है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये डार्विन की थ्योरी सोचिए कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से यहाँ भी भगवान जो है एवोल्यूशन हो रहा है भगवान का भी, क्योंकि इन अवतारों से ऐसे ही लगेगा देखने में। साधारण व्यक्ति जो महामाया के अधीन है, इन अवतारों के जो प्रकृति को देखकर, अलग अलग रूप को देखकर, माया जगत में माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव सोच सकता है कि ये जो डार्विन का थ्योरी है बिल्कुल सही है, जो एवोल्यूशनरी साइकिल बताया है ये बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि संभवामी आत्माया है ना, और जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म है दिव्य है, मैं अपने स्वरूप शक्ति के माध्यम से, स्वरूप शक्ति से भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूं। और आगे क्या बता रहे हैं, कच्छपे कूर्म रूप कहा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बताया मत्स्य अवतार के बारे में, मत्स्येषु मत्स्य भावो ही, और मत्स्य क्या है, बिना दंड के हैं, मत्स्य बिना दंड के होता है, दंड नहीं है पीछे, मछली का दंड नहीं होता है, सांप का भी दंड नहीं होता, नहीं मत्स्य का दंड नहीं होता है। फिर क्या बता रहे हैं, कच्छपे कूर्म रूप कहा, और जीव जो है जब वज्र दंड को स्वीकार कर लेता है जीव, तो उसमें उस समय भगवान जो है कूर्म रूप धारण करते हैं, कच्छप अवतार। कच्छप अवतार में क्या किया था भगवान ने, सुमेरु मंदरा पर्वत उठाया, सुमेरु पर्वत नहीं उठाया, मंदरा पर्वत उठाया अपनी पीठ पे, तो वो जो दंड है उसको वज्र दंड कहते हैं। तो जब जीव इस प्रकार से वज्र दंड स्वीकार करते हैं, वज्र दंड का ध्येय स्वीकार करते हैं, तो उस समय भगवान जो है वो भी वज्र दंड का रूप धारण करते हैं, कूर्म रूप में प्रकट होते हैं। आगे बता रहे हैं, मेरु दंड युते जीवे वरा भाववान हरि। और जब जीव जो है वज्र दंड से मेरुदंड धारण कर लेता है, मेरुदंड तो थोड़ा सीधा होता नहीं, तो मेरुदंड से जब जीव वज्रदंड से मेरुदंड धारण कर लेता है, जैसे कि शुकर का रूप है, उस समय भगवान जो है बरा रूप में प्रकट होते हैं, ये है मेरुदंड। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, नरसिंगो मध्य भावो ही वामना क्षुद्र मानवे भार्गवो सभ्य वर्गेशु सभ्य दाशरथिस तथा। जब जीव मनुष्य और पशु का रूप धारण कर लेता है, दोनों रूप धारण कर लेता है, ऐसे कई रूप हैं, जैसे कि किम पुरुष लोक में लोग जो है शरीर आधा उनका वानर का होता है, आधा मनुष्य का होता है, किम पुरुष लोक में हनुमान जी रहते हैं, अयोध्या में साकेत धाम में भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, किम पुरुष लोक के जो जीव हैं उनका रूप इस प्रकार से होता है, आधा शरीर वानर का आधा शरीर मनुष्य का होता है। इस प्रकार जब जीव रूप धारण करते हैं तो भगवान भी प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, नर और सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। और वामना शूद्र मानवे, जब जीव वामन रूप में बोने बोने, सर्कस में बोने होते ना, आप सर्कस देखे होंगे, आप लोगों ने सर्कस देखा है, तो उसमें बोने होते हैं, डॉफ डॉफ कहते हैं बोने, तो बोनों को देखकर भगवान की भी इच्छा हुई चलो इनका भी साथ देना चाहिए मुझे, तो भगवान भी जो है बोने बनकर आए। वामन अवतार, बोना तो नहीं बोलते भगवान को, वामन, वामन अवतार में प्रकट हुए। बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन कर रहे हैं भक्ति ठाकुर, और बता रहे भार्गवो सभ्य वर्गेशु। और जब जीव असभ्य हो जाते हैं, असभ्य आदिवासी लोग होते हैं, जैसा असभ्य लोग होते हैं या अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं, किराट वर्ग के लोग होते हैं, तो उस समय भगवान जो है परशुराम के रूप में प्रकट होते हैं। और उसके बाद सभ्य दाशरथिस तथा, असभ्य है तो परशुराम और सभ्य है तो दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, वो सामने खड़े हैं भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। सर्वविज्ञान संपन्न, सर्वविज्ञान संपन्न, जब जीव सभी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान का धन प्राप्त कर लेता है तो उस समय कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, कृष्णस्तु परम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तर्क निष्ठ निष्ठनरे बुद्धो नास्तिके कलकीर एवच। अच्छा, फिर जब जीव जो है तर्क करने की प्रवृत्ति जागृत करता है, तर्क तार्किक हो जाता है, कलयुग में अधिकांश लोग तार्किक होते हैं, फालतू में चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, बहस करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं भगवत भक्ति को, तो ऐसे में तर्क निष्ठ नरे बुद्धो, भगवान जो है बुद्ध रूप में प्रकट होते हैं, बुद्ध शरीरा। नास्तिके कलकी रेवच, और जब अधिकांश जनता नास्तिक हो जाती है तो भगवान कलकी रूप में प्रकट होते हैं, और ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, बड़ा सुंदर बता रहे हैं, अवतारा हरेर भावा क्रम ऊर्ध्वा गतिमत धृदि न तेषां जन्म कर्मादौ प्रपंचो वर्तते क्वचित। और जैसे जैसे जीव विकास करता है, क्रमशः विकास करता जाता है, तो भगवान जो है इस तरह से भक्तों के भावानुसार अवतरित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। लेकिन जितने भी अवतार हैं, ये बता रहे हैं, न तेषां जन्म कर्मादो प्रपंचो वर्तते क्वचित, लेकिन ये भगवान के जितने भी अवतार हैं ये कभी दूषित नहीं होते हैं, विशुद्ध सत्वमय रहते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में भी अगर प्रकट होते हैं तो तभी विशुद्ध सत्व में रहते हैं। गर्भोदक सागर में गए, गर्भोदक सागर तक पहुंच गए, गर्भोदक सागर को अलग कर दिया, फाड़ डाला एकदम से, वहां तक पहुंच गए लेकिन दूषित नहीं हुए। इस जगत में जो सुअर है वो मल प्राप्त करने के लिए अपना वो भी मुंह घुसाता है, सर है ना, मल का भी वो विभाजित कर देता है अंदर घुसने के लिए, है ना, और दूषित हो जाता है, पूर्ण रूपेण दूषित हो जाता है, और अंदर से कोई पृथ्वी नहीं निकालता वो साधारण सुअर, जब मल में अपना मुंह डालता है तो पृथ्वी थोड़ा निकलती है बाहर, वो मल ही निकलता है, मल में मुंह डालकर मल ही खाता है वो। लेकिन भगवान जब है गर्भोदक सागर तक पहुंचते हैं तो इस पृथ्वी देवी को वहां से निकाल के बाहर लाते हैं और जल के ऊपर लाके रख देते हैं, सही स्थान पर रख देते हैं। तो इस प्रकार इन बातों को हम लोग समझ सकते हैं आचार्यों के माध्यम से, ये जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं यही हम समझा सकते हैं। भक्तिनोद ठाकुर ने इस पुस्तक में लिखा है, इसके पीछे यहां पर लिखा हुआ है, आई हैड अ ग्रेट डिजायर टू ट्रांसलेट श्रीमद भागवतम इन दिस प्रॉपर स्वैन लाइक वे, बट आई हैव नो टाइम टू ट्रांसलेट दिस ह्यूज वर्क। भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है रही है कि श्रीमद भागवत का मैं अनुवाद करूं, लेकिन क्या करूं मेरे पास समय नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्तिनोद ठाकुर की इच्छा को पूरा किया है, इस भागवतम का अनुवाद कर। तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो आज के इस श्लोक में देखते हैं कि तात्पर्य में वर्णन किया गया है, श्रील जी गोस्वामी के अनुसार ये बताया गया है कि दो विभिन्न प्रलयों में, चाक्षुष प्रलय और स्वयंभू प्रलय में ये घटना घटित हुई। और श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर सुझाव रखते हैं कि मुनि मैत्री ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप विदुर के समक्ष रखा है, यानी कि भगवान का जो आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, वो स्वयंभू वनमंतर में हुआ जिसमें वो पृथ्वी को लेकर आए। और जहाँ तक हिरण्याक्ष के साथ जो युद्ध किया उन्होंने, वो अन्य प्रलय में हुआ, चाक्षुष प्रलय में हुआ। और तो इनको मिला दिया, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि मुनि मैत्र ने इसको मिला दिया विदुर जी को समझाने के लिए, विदुर के समक्ष रखा। तो अलग अलग प्रलय की कथा है या मनमंत्रों की कथा है, तो दोनों कई जो है मिलाकर एक ही कथा के रूप में प्रकट कर दिया। तो बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुनना चाहेंगे कथा? हाँ। तो इस प्रकार ये कथा प्रारंभ होती है, हम इसको बड़े संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। आगे जब अध्याय आएगा तो वहाँ पर आप एक एक श्लोक सुनेंगे इसके बारे में, इस तरह से ये घटना घटी। तो एक बार की घटना है, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, देवताओं को सुना रहे हैं कि क्या हुआ। एक समय की बात है ना, उस समय चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किए। हम जानते हैं कि चार कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, है ना, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में जब प्रवेश किए, जहां पर असंख्य वैकुंठ लोग बास करते हैं, वैकुंठ, हाँ, वैकुंठ प्लैनेट्स, वैकुंठ लोग अनगिनत हैं, असंख्य हैं। जिस तरह से आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में सूर्य दिखाई पड़ता है, ऐसे असंख्य वैकुंठ लोग जो हैं आध्यात्मिक जगत में हैं, एक कोने में है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में देखेंगे तो वैकुंठ लोग जो हैं, असंख्य वैकुंठ लोग जो हैं, एक कोने में हैं। और गोलोक वृंदावन जो कि एक कमल सदृश है, उसकी एक पंखुड़ी में अनंत कोटि वैकुंठ लोग हैं, इस प्रकार वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में। और इन अनंत कोटि वैकुंठ लोक में भगवान के अवतार हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो कितनी अचिंत शक्ति है भगवान की, इसलिए इस शक्ति को अचिंत कहा जाता है, क्योंकि हमारे चिंता के दायरे में नहीं है, हम इसको अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, समझने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर चार कुमारों के बारे में बताया जाता है कि चार कुमार जो हैं वो पहुँचे, वैकुंठ लोग पहुँचे, और उन्होंने छह द्वार पार कर लिए थे, सात द्वार हैं। श्रीरंगम जाएंगे आप? श्रीरंगम गए? आप में से कितने भक्त हैं श्रीरंगम? सच्चिदानंद गौर प्रभु गए हैं, आप भी गए हैं, प्रभु जी भी गए हैं, कुछ लोग गए हैं, हरिसुंदर प्रभु भी गए हैं। अच्छा, वहाँ सात द्वार हैं श्रीरंगम में भी, रंगनाथ जी का मंदिर है, और वैकुंठ लोक की ही उन्होंने नकल की है, वैकुंठ लोक ही हैं। तो छह द्वार पार करके चार कुमार जो हैं जब सातवें द्वार पे पहुँचे, तो वहाँ पर ऋषियों की मुलाकात द्वारपालों से हुई। और ये द्वारपाल कौन थे? जय और विजय। हर द्वार में कोई ना कोई द्वारपाल होते हैं, तो इनकी सेवा है, ये भगवान के निकट नहीं है। जैसे हम लोग अलग अलग मुक्ति के बारे में वर्णन सुनते हैं, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, एक ही लोक में रहना, तो ये भगवान के पास खड़े हुए चामर तो नहीं कर रहे हैं, समीप नहीं खड़े होते ये, लेकिन वैकुंठ लोक में तो है ना। तो वैकुंठ लोक में ये द्वार में खड़े हैं, और चार कुमारों को जब इन्होंने देखा, तो चार कुमारों को देखकर, उनकी नग्न अवस्था को देखकर, कुमार अवस्था में थे और साथ में नग्न थे, उनको देखकर जय विजय ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, अंदर घुसना नहीं अंदर। तो जय विजय जो है उनको रोक दिए, चार कुमारों को देखकर उनको रोका, और रोकते ही चार कुमार को क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हो गईं, कौन है ये लोग जो हमें रोक रहे हैं यहां पर अंदर जाने से, किनको इन्होंने स्थान दिया, वैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं है ये, तो कोई ढोंगी लगते हैं, विश्व दूतों का इन्होंने रूप धारण किया है और यहां खड़े हुए हैं और हमें रोक रहे हैं, ये द्वंद्व से भरे हुए हैं, इनको तो पृथ्वी लोक में जाना चाहिए। पृथ्वी लोक में जहां पे द्वंद है, जहां पे कोई किसी का शत्रु होता है, कोई किसी का मित्र होता है, वहीं पे रहने के लायक है। ये बैकुंठ लोक के निवासी नहीं लगते हैं, ये कोई इंपोस्टर लगते हैं, ढोंगी लगते हैं। तो इस प्रकार द्वारपालों ने अनुभव किया, उन्होंने समझा इस बात को कि वास्तव में ये क्या कर दिया, उन्होंने रोक दिया कि ब्राह्मणों के द्वारा अब उनको शाप दिया गया है। आगे तो कुछ बोला नहीं चार कुमारों ने, लेकिन इतना जरूर बोला कि इनको पृथ्वी लोक को जाना चाहिए। अब मुंह से जो निकल गया निकल गया, है ना, ये कोई आप और हमारी तरह तो है नहीं कि कलियुग के लोग हों कि कुछ भी बोलते रहे हम लोग, है ना। तो इसलिए कलियुग में शाप का कोई असर नहीं होता है, है ना। लेकिन प्राचीन समय में सतयुग में यहां तक कि द्वापर युग तक भी शाप का प्रभाव पड़ता था। और ये तो चार कुमार हैं, सबसे वरिष्ठ हैं चार कुमार, है ना, नारद जी से भी बड़े हैं, सबसे वरिष्ठ हैं चार कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये जो चार कुमार हैं ये बड़े ही क्रोधित हुए और इसके बाद इन्होंने कहा, द्वारपाल ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, हम दोनों को इस प्रकार दंडित कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि अगर हम जाएं पृथ्वी लोक में जाएं, तुम्हारी ये प्रार्थना है कि हम भगवान को नहीं भूलें। आप हमें पृथ्वी लोक में भेज तो रहे हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि जब हम पृथ्वी लोक में जाएं तो हम आपको भूलें नहीं। तो उसी क्षण क्या हुआ, जैसे ही जयविजय ने कहा कि परम भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान को बड़ी चिंता होती है अपने भक्तों की, और ये भी नित्य परिकर भगवान के अपने पार्षद जो है वहां पर निवास कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, उनकी तो बहुत चिंता करते हैं भगवान, और उनको कोई शाप दे दे तो तत्काल ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए उसी क्षण, क्षण प्रकट हो गए और चार कुमारों ने भगवान विष्णु को देखा, और जिनको देखकर, जिनके सुंदर स्वरूप को देखकर और उनके चरणों से जो गंध निकल रही थी, तुलसी गंध निकल रही थी तुलसी की, उसको देखकर अब वो ब्रह्मवादी नहीं रहे, भगवान के भक्त बन गए, अनन्य भक्त बन गए। वो ब्रह्मवादी नहीं रहे, भगवान विष्णु के भक्त बन गए। सुंदर श्यामल रूप देखकर पीत वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर वैजयंती माला धारण किया था भगवान ने, चतुर्भुज रूप को देखकर चार कुमार प्रभावित हुए, आकर्षित हुए, और उसके बाद भगवान उन चार कुमारों को देखकर क्या कहते हैं, तो चार कुमारों को देखकर भगवान कहते हैं, पहले तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, क्या कहा, कि ये जो जय और विजय हैं ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, और आपने जो दंड दिया है इसको मैं स्वीकार करता हूं, आपने जो इनको दंड दिया है वो मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है ये दंडित होंगे, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये मेरे सेवक हैं, अपराध किया है, मैं चाहता हूं कि आप इनको क्षमा कर दें। भगवान अपने भक्तों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, देखिए, और साथ में ये कह रहे हैं, क्योंकि जब सेवक कोई अपराध करता है तो साधारण लोग जो हैं मालिक को ही दोष देते हैं, है कि नहीं। जब शिष्य अपराध करता है तो लोग गुरु पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं। शिष्य अगर कोई नियम तोड़ते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो उनके गुरु के बारे में पूछा जाता है। और जय विजय ने अगर इस प्रकार किया है, चार कुमारों का पान किया है, तो भगवान को ये लगा कि लोग यही बोलेंगे, देखो किसके सेवक हैं, ये तो भगवान विष्णु के सेवक हैं, वैकुंठ लोक के वासी थे, उन्होंने ऐसा किया चार कुमारों के साथ, आप वैकुंठ वासियों की बात करते हो, तो इस प्रकार लोग कहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको क्षमा कर दें। भगवान ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से जब पूरे शरीर में एक कोने में केवल त्वचा में कोढ़ का रोग शुरू होने लगता है तो उससे क्या होता है, पूरा शरीर जो है वो बेकार लगने लगता है कि नहीं। तो ये द्वारपाल भले ही हो सकता है अनंत कोटि भक्त लोग हैं वैकुंठ जगत में, भले ये सिर्फ दो भक्त हों, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है तो फिर क्या होगा, दोष लग जाएगा, पूरे वैकुंठ जगत में दोष लग जाएगा। मेरे लिए जहां तक ब्राह्मण जो है बड़े पूजनीय हैं, और आप चाहें तो मैं अपने हाथ को काटने के लिए तैयार हूं, आप मेरा हाथ काट सकते हैं चाहे तो, लेकिन क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, भक्त होने के कारण मेरे जो चरण कमल हैं वो अति क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, और कोई मेरे चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो सभी पापों से वो छुटकारा पा लेता है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ में जो अर्पित करते हैं लोग, अग्निकुंड में अलग अलग सामग्री अर्पित करते हैं यज्ञ में, तो उस समय इतना प्रसन्न नहीं होता हूं। प्रसन्न कब होता हूं, जब मैं ये देखता हूं कि नाना प्रकार के व्यंजन जो हैं मेरे भक्त जो ब्राह्मण लोग हैं वो स्वीकार करते हैं जब, तो उसमें मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग पूर्ण रूप से समर्पित है मेरे चरणों में। भगवान कहते हैं गंगा जी जो है मेरे चरणों से निकल रही है, तो इसलिए उसको चरणामृत कहते हैं, है ना। तो भगवान के चरणों से निकलती है गंगा जी, चरणों को जो धोती है, तीनों लोगों को पवित्र करती है। भगवान कहते हैं कि जब मैं स्वयं वैष्णव की चरण धूलि अपने मस्तक में धारण करता हूं, अपने भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक में धारण करता हूं, तो कौन इस चरण धूलि को स्वीकार नहीं करेगा, हम सब स्वीकार करेंगे। भगवान स्वयं वैष्णव की चरण धूलि अपने शीश में धारण करते हैं। तो इन भक्तों ने, इन सेवकों ने अपराध किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक याचना करता हूं कि मैं चाहता हूं कि जल्द ही ये जो मेरे भक्त हैं वापस धाम आ जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार भगवान बड़े नम्रता से, बड़ी दक्षता से, वाक्पटुता थी भगवान की, और इस वाक्पटुता को सुनकर, दक्ष प्रस्तुतिकरण को सुनकर चार कुमार जो हैं उनका हृदय पिघल गया, और कुमारों ने कहा कि हे भगवान, हम आपकी योजनाओं को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप हमें दंडित कर सकते हैं या इनको दंडित कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको दंडित करें, हमें दंडित करें, हम आपकी योजनाओं को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान ने कहा हे ब्राह्मणों, ये जो दंड जो दिया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा जो शाप दिया गया है, ये वास्तव में मेरी योजना है। तो ये भगवान की लीला होती है, भगवान कहते हैं ये मेरी योजना है, और इस कारण से इनको असुर परिवार में जन्म लेना होगा, और साथ में लेकिन जल्द ही जो है वे वापस आएंगे, मेरे धाम वापस लौटेंगे। तो ये वास्तव में भगवान की इच्छा होती है, जब वैकुंठ जगत छोड़कर विष्णु दूत या भक्त लोग वहां के नित्य परिकर इस भौतिक जगत में आते हैं, तो ये भगवान की स्व इच्छा होती है, भगवान युद्ध करना चाहते हैं। वैकुंठ जगत में युद्ध करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहां तो हर भक्त जो है भगवान की सेवा कर रहा है, प्रेम में सेवा कर रहा है, इसलिए युद्ध करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि क्रोध वहां प्रकट नहीं कर सकते हैं, किसके साथ क्रोध प्रकट करेंगे, ऐसा विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बताया है कि टीका में कि भगवान की युद्ध करने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान वहां पर ये क्रोध का जो रस है वो प्रकट नहीं कर पाते हैं भक्तों के साथ, तो अपने भक्तों को ही चुनते हैं, उन्हीं को ही राक्षस बनाकर भेजते हैं, और उनके साथ यहाँ पर युद्ध करने की लीला करते हैं, और जब यहाँ युद्ध करते हैं तो उनको आनंद आता है। ऐसा होता है कभी हम किसी का युद्ध करते हैं हमें आनंद आ रहा हो, कभी किसी के और किसी के साथ क्रोध प्रकट कर रहे हैं, किसी के प्रति क्रोध प्रकट कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ऐसा होता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा होता है, भगवान के जो जन्म है, उनका कर्म है, वो दिव्य है, उनको आनंद आता है, उनके आनंद की वृद्धि होती है उसमें भी, क्रोध जब प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तव में क्रोध प्रकट करते हैं, ये बात जरूर है, भगवान जब क्रोध प्रकट करते हैं तो वास्तव में क्रोधित होते हैं, और उनका क्रोध कितना भयानक होता है आप सुनेगा, और उनके जो सेवक हैं, जो वो राक्षस बन के आते हैं, वो इस जगत के राक्षस की तरह नहीं होते हैं, दिल्ली में कई असुर और राक्षस घूम रहे हैं, उनकी तरह नहीं है, जब भगवान के भक्त, अनन्य भक्त जो उनके नित्य परिकर राक्षस बन के आते हैं, तो फिर पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है, फिर भगवान ही ऐसे राक्षसों से छुटकारा दिला सकते हैं, और कोई किसी में शक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में कि ऐसे राक्षसों से हमारी रक्षा कर सके, इसलिए तो देखिए ब्रह्मा जी को भी स्वयं भगवान के पास जाना पड़ता है, ऐसे राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए। ये राक्षस जो हैं इनके पास शक्ति, नित्य परिकरों के पास भगवान जितनी शक्ति होती है, एक नित्य परिकर जो है पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। श्रील प्रभुपाद जब धाम से आते हैं तो उनके पास क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है उनका उद्धार कर सकते हैं। ये शक्ति होती है नित्य परिकरों में, भगवान का ही कार्य करने आते हैं, कार्य करने के लिए आते हैं नित्य परिकर, इसलिए ऐसे नित्य परिकरों को शाक्त वेश अवतार कहा जाता है। तो ये चार कुमारों ने भगवान की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और उसके बाद भगवान ने जयवे जी को आज्ञा दी, जाओ तुम दोनों पृथ्वी लोक में जाओ, लेकिन डरो नहीं, और मैं चाहता तो ये ब्राह्मणों का शाप जो है वो मैं समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी एक बार लक्ष्मी जी आना चाहती थी, उस समय मैं विश्राम कर रहा था और तुमने उनको रोका था, तो ये तो पहले से ही निर्धारित था कि कुछ ना कुछ दंड तो तुम्हें मिलने ही वाला है ना, तो ये मेरी योजना है, चिंता मत करो। और अब ये चार कुमारों ने जो शाप दिया ये भी मेरी इच्छा है, तो वैसे तो तुम लोगों को 7 जन्म तक वहाँ पर रहना था, लेकिन चलो मैं, मेरी इच्छा है कि तुम 3 जन्म जो है असुर परिवार में, राक्षस के परिवार में जन्म लो, राक्षस के रूप में जन्म लो, और 3 जन्म के बाद फिर तुम वापस आ जाओ, जल्द ही वापस आ जाओगे तुम, चिंता मत करो। 3 जन्म यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, वहाँ तो चुटकी ही बजाई होगी भगवान ने मुश्किल से और जय विजय वापस आ गए होंगे, लेकिन इस जगत में 3 युग बीत गए, हाँ अलग अलग मनवंतर बीत गए, अलग अलग मनवंतर बीत गए, जिसमें ये राक्षस के रूप में आए और अंततः जो है जब शिशुपाल और दंतपुत्र के रूप में आए तब उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कहकर जो है भगवान वहां से अप्रकट हो गए और चार कुमारों का ये जो है शाप, जो शाप दे दिया था भगवान ने उस शाप को पूरा किया और जय विजय जो है वो दीति के घर में प्रकट हुए, कश्यप मुनि के जो पत्नी थी दीति, आदिति और दीति, आदिति से देवता लोग प्रकट हुए और दीति से जो है दैत्य प्रकट हुए, असुर और राक्षस प्रकट हुए, और इस प्रकार ये जय विजय जुड़वा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इसमें हिरण्याक्ष को बड़ा बताया जाता है, हालांकि जब जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप पहले निकल के आए, लेकिन हिरण्यकश्यप सबसे पहले प्रवेश किए थे माता दीति के गर्भ में, तो इसलिए हिरण्याक्ष को बड़ा बताया जाता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, अक्ष मतलब आंखें, हिरण्य, हिरण्य का मतलब है जो हमेशा ऐश्वर्य धन उपभोग की तलाश में रहता है, धन की तलाश में रहता है। हिरण्यकश्यप जो धन और स्त्री की तलाश में रहता है वो हिरण्यकश्यप है, दोनों का एक ही उद्देश्य है। इस भौतिक जगत में जब कोई आता है तो इसी उद्देश्य से आता है, भोगने की इच्छा करने को आता है। जीव जब धाम को छोड़कर आता है, इस भौतिक जगत में आता है, तो वो भी भगवान बनने की इच्छा से ही आता है, क्योंकि भगवान जैसा वो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है यहां पर आकर, और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की वो तपस्याएं करता है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवत की इसी तृतीय स्कंद में जब आगे हम बढ़ते हैं और इसका वर्णन सुनते हैं कि किस प्रकार ये जब लोग जो प्रकट हुए जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, तो उस समय क्या हालत हुई, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है, सुनिएगा। साध्वी दीति अपने घर में स्थित संतानों के से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी ये भविष्यवाणी की थी। उसने 100 वर्षों के गर्भकाल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो कितने साल तक ये लोग घर में रहे, 100 साल तक। 100 साल तक कोई घर में रहता है क्या? सुखदेव गोस्वामी का तो हमने सुना था 16 साल रहे, लेकिन ये तो 100 साल रहे अपने माता के घर में। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। मतलब प्रकट होने से पहले ही सब कुछ शुरू हो गया। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्कालों, प्रच्छल, तारों तथा वज्रों के साथ साथ अनेक अशुभ ग्रह यथा शनि दिखाई देने लगे। बारंबार साएं साएं कर दी तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत अनिच हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल उनकी पताकाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को घटाएं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही है। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विशुद्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। बार बार सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल दिखाई पड़ने लगे। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं में रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। गांवों के भीतर सियारों ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जब कली भी प्रवेश करता है, कलयुग जब शुरू होता है, तभी इसी प्रकार का ही माहौल हो जाता है, वातावरण हो जाता है। ये सब कलयुग का लक्षण है। और जब ऐसे राक्षस प्रकट होते हैं तभी ये लक्षण प्रकट होते हैं। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। विलाप मतलब कोई अगर रोते हुए बोलता है या बोलते हुए रोता रहता है, उसको विलाप कहते हैं। कभी जब देखते हैं कुत्तों की आवाज आती है ना, वो भौंकते नहीं है, चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझा जाता है कि उस घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। कुत्ता देख सकता है यमदूतों को आते हुए, और यमदूतों को जब देखता है कुत्ता आते हुए तो चिल्लाता है, रोता है, उसके रोने की आवाज आती है। और घर के आसपास अगर रोने की आवाज आ रही है, कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है, समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है उस घर में, कुछ यमदूतों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार कुत्ते विलाप कर रहे थे। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंगने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मलमूत्र त्यागने लगे। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, जब यमदूतों को देखता है, लेटे लेटे मलमूत्र त्यागता है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यमदूतों का दर्शन हो रहा है उस पापी व्यक्ति को। भयभीत होने के कारण गौएं दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पी बरसने लगा, कम से कम खून देने लगी थी गौएं जो है। कलयुग इतना खराब है कि दूध ही नहीं देती गाय आजकल, ना खून देती है, खुद देती नहीं है, गायों को ही मार देते हैं लोग। बादलों से पी बरसने लगे, मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे। ऐसे कई मंदिर हैं, हमने देखे हैं, अगर आप गए होंगे, कली का प्रभाव है, साक्षात लगता है। यहां बताया कि वर्णन किया गया है कि अगर आप ऐसे मंदिरों में जाकर विग्रह का दर्शन करेंगे जहां पर ना विग्रह का श्रृंगार होता है, साल में एक बार कपड़े बदले जाते हैं, रोज बूंदी का भोग लगाया जाता है, पुजारी लोग भी बिना नहाए घुस जाते हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सब लोग स्पर्श कर रहे हैं विग्रह का, है ना, आप देख सकते हैं ऐसे विग्रह जो है वास्तव में रोते हुए नजर आते हैं। देखिए हमारे मंदिर में विग्रह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते। जहां जहां सेवा होती है ठाकुर जी की, वहां विग्रह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन जहां जहां पर विग्रह की सेवा ठीक से नहीं हो रही है, वहां पर आप देख सकते हैं जाके उन मंदिरों में विग्रह रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसा लगता है आंसू वास्तव में बहा रहे थे। और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। बाप रे, बड़ी भयानक अवस्था। इन तथा अन्य अपशुकनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्रों, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, कि अतिरिक्त सभी लोग भयभीत उठे। तो चार कुमार तो जानते थे, इसलिए वो भयभीत नहीं थे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता ना था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का लय होने वाला है। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों का शरीर शीघ्र ही असामान्य दिखाई देने लगा। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे, जल्दी बढ़ने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि कई साल बीत रहे थे उनको बढ़ने में, जन्म लेने के बाद जल्दी वो लोग बढ़ने लग गए। और कैसे बढ़ने लगे, विशाल पर्वतों के समान, भयानक एकदम, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनके शरीर इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थीं और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पद पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे, उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर के सूर्य ढक जाएं। जैसे कि अभी हमने देखा था हाल ही में रामलीला, वो ड्रामा में दिखा रहे थे जो रावण का रोल कर रहे थे, और रावण क्या कह रहा है कि मेरे भय से तो वरुण जो है मेरे बगीचे में क्या करता है, पानी डालता है। ये इंद्र की बात कर रहे थे। इंद्र इतना भयभीत हो चुका है कि बगीचे में क्या करता है, वो पानी डाल रहा है, फूलों में पानी डाल रहा है। सारे देवी देवता जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, चलो झाड़ू मारो पानी डालो। वरुण इंद्र चंद्र सूर्य सब जो है सेवा में लगे हुए हैं। और वास्तव में यह हालत थी देखा जाए तो, सभी देवता तो कई तो देवी देवता भाग गए छुप गए। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थीं, उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थीं और जब वे खड़े तो होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर में सूर्य ढक जाएंगे। जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उनका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उनका नाम हिरण्यकश्यपु रखा। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को तीनों लोकों में किसी, ज्येष्ठ हिरण्यकश्यपु है, लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था क्योंकि उसे ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत घमंडी तथा उद्धत हुआ था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। तो ये यहां पर हिरण्यकश्यपु के बारे में बताया। छोटे भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्धत रहता था। हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूमने गया। तो वो ढूंढ रहा था किससे लड़ूं किससे लड़ूं, लेकिन कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, सब पहले भाग जाते थे। हिरण्याक्ष का वेग असह था, उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किया था। उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे घमंडी बना दिया था। तो हिरण्याक्ष को भी वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, हिरण्यकश्यपु को भी वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से। उसे ना तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और ना उस पर किसी का अंकुश था, अतः देवता उसे देखकर भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेता जिस तरह गरुड़ के भय से सब छिप जाता है। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष ना पाकर ये देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। सरलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबली असुर ने गंभीर गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। तो समुद्र में डुबकी लगाए तो वरुण को क्या किया, उत्तेजित किया, आओ लड़ो मुझसे। समुद्र में उसके प्रवेश करते वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना बार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी धाक जमा ली। हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेकानों वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बार बार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। और वरुण के बाद जब पहुंचा, विभावरी वरुण की पुरी है, वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अल्प प्रदेशों का रक्षक है जहां सामान्य असुर वास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाते हुए मुस्कान के साथ कहा, हे परमेश्वर मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो वरुण से प्रार्थना करने लगे, क्या परमेश्वर है आप युद्ध करें। आज समस्त गोलोक गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिमान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्द को दलकर तथा इस संसार के दैत्यों तथा दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया है। तो इस प्रकार उनकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन वरुण देव कहते हैं परम दंभी शत्रु के द्वारा उपहास किए जाने पर जल के पूजे स्वामी को क्रोध तो आया किंतु तर्क के बल पर वह उस क्रोध को भी पी गए और इस प्रकार उतर दिया। क्या उतर दिया देखिए, हे प्रिय, युद्ध के लिए बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूं। तो वरुण कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिख पड़ता। तो वरुण देव ने पहले ही बोल दिया कि आपसे केवल एक ही व्यक्ति युद्ध कर सकता है और वो है परम पुरातन परम पुरुष भगवान विष्णु, जो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसी सभी योद्धा बढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार वरुण ने कहा कि आप उनके साथ जाकर युद्ध करो। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी दूर हो जाएगी और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वैवरा जैसे विविध अवतार धारण करते रहते हैं। मैत्र ने कहा, उस घमंडी तथा दर्पी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसने नारद से श्री भगवान का पता लगाया और अत्यंत वेग से समुद्र की गहराई में पहुंच गया। तो फिर से समुद्र की गहराई में पहुंचा, वहां अपने परम शक्तिमान श्री भगवान को उनके वरा रूप में अपनी दाढ़ों के अग्र भाग पर ऊपर की और पृथ्वी को धारण किए, क्योंकि अब वरा भगवान प्रकट हुए थे। हमें पता है भगवान वरा कैसे प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए थे, नासिका के छिद्रों से प्रकट हुए थे। इतना छोटा रूप धारण किया था भगवान वरा ने, ब्रह्मा भी देखकर जो है आश्चर्यचकित हो गई, कौन निकल रहा है मेरे नाक से। नाक का छिद्र कितना छोटा होता है और उसमें से कोई जीव निकला है बाहर, तो कैसा लगेगा आपको। ब्रह्मा जी भी कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गए, ये कि हो क्या रहा है, 84 लाख योनी जो है, 84 लाख योनियां तो मैंने बनाई है ये, लेकिन नाक के छिद्र से तो कोई निकाला नहीं मैंने। 84 लाख योनियां जो है ब्रह्मा जी के शरीर में वास करती हैं, लेकिन नाक से जो है पहला जीव देखा था। और ऐसा जीव जो निकलते ही जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, उसका रूप आकाश को छूने लगा, ये रूप भगवान वरा का रूप। और ये देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े विचलित हो गए, देख ले कौन हो सकता है। फिर वो समझ गए ब्रह्मा जी कुछ समय के बाद कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। वहां उसने परम शक्तिमान श्री भगवान को उनके वरा रूप में अपनी दाढ़ों के अग्र भाग पर ऊपर की और पृथ्वी को धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, हो कैसा अभ्यचर पशु है। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो, ये पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है। कहां ले जा रहे हो ये पृथ्वी लोक को, ये हमारी पृथ्वी लोक हमारी है, तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। कहां ले जा रहे हो उसको। अरे दुष्टा, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कई असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारे शक्ति केवल योग माया है, आज मैं मार का और अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। असुर ने कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी हुई गदा तुम्हारे सिर पर सिर फट जाएगी और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, वे स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाता है। मैं गदा फेंकूंगा तो फिर क्या होगा, खत्म हो जाओगे तुम। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश वेदने वाले वचनों से अत्यंत पीड़ित थे कि कैसी कैसी बातें कर रहा है, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वह अपनी डाड़ों को एक अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देकर जल में से निकालकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। तो भगवान जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर ला के रख दिया। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले असुर ने जल से निकलते हुए भगवान को उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष जिस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हो। निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं होता। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी आंखों के सामने रख दिया और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा श्री ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। शरीर में प्रचुर आभूषण कंकण तथा स्वर्णिम कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। भगवान वरादेव कह रहे हैं, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे कुत्तों का शिकार करते फिरते हैं। बोलते हम जंगल के प्राणी तो हैं, लेकिन तुम जैसे कुत्तों का हम लोग शिकार करते हैं जंगलों में। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मशलाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारे शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल से कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। तुम पैदल सेना से के नायक हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंता को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता तो वह सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं होता। श्री मैत्र ने कहा, जब भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह क्रुद्ध और शुद्ध हुआ और क्रुद्ध से उसी प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार ललकारा हुआ सर्प। क्रोध के मारे मारे अंगों को कांपते फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर कूद पड़ा और अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। अभी आप देखिए कि किस तरह से भगवान अवराधेव और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में जब देवता लोग भी प्रार्थना करने लगे कि बहुत हो गया युद्ध, आप इनको मारिए, तो भगवान ने बड़ी आसानी से कनपट्टी पर एक चांटा मारा हिरण्याक्ष के। लेकिन उससे पहले देखिए भगवान किस तरह से युद्ध कर रहे हैं। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्ष स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुटला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा देता है। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बार बार घुमाने लगा। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वैसुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। तो ये देखिए, भगवान चाहते तो एक ही चांटा मार के खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान युद्ध का आनंद लेना चाहते हैं, है कि नहीं। जब भगवान नरसिंह भी प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष के साथ वो काफी समय तक युद्ध कर रहे थे, ऐसे नहीं आते ही मार दिया उन्होंने, है ना, क्योंकि वो इस वीर रस का, इस युद्ध रस का आनंद लेना चाहते थे। तो भगवान भी खेलते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या, ये क्रीड़ा है, ये लीला है, है ना। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया। इस प्रकार हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से परस्पर प्रहार किया। जैसे कि कई बार राजा भी देखिए युद्ध करने की इच्छा से अपने ही को मित्रों को बुलाता है और क्या करता है, युद्ध करता है, और वास्तविक युद्ध होता है, तो इस तरह से राजा भी आनंद लेता है। तो भगवान भी इसी तरह से ही है, लीला करते हैं और अपने ही भक्तों को चुनते हैं राक्षस के रूप में और उनके साथ युद्ध करते हैं। दोनों योद्धाओं में अत्यंत स्पर्धा थी, दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदा से चोटें लगी थी और शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो रहे थे। जीतने की इच्छा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी मुठभेड़ वैसा ही प्रतीत होती थी जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ रहे हों। हे गुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य होने वाले इस भयंकर युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तो ये सब युद्ध देख रहे थे। जब युद्ध हो रहा था तो फिर ये क्रीड़ा थी, इस क्रीड़ा को देखने के लिए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ उपस्थित हुए क्रीड़ा देखने के लिए। युद्ध भूमि में पहुंच कर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक श्री ब्रह्मा ने असुर को देखा जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था, तथा ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। श्री ब्रह्मा ने कहा, ये राक्षस देवताओं ब्राह्मणों गौओं तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निर्दोष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बन चुका है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है, समस्त भूमंडल में अपने समान योद्धा की तलाश में घूमता रहता है। हे भगवान, इस सर्वतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतनी देर से खेल रहे हैं इसके साथ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो असुर तो भयभीत है ही, आप तो देवता लोग भी भयभीत हो गए बार बार इस राक्षस को देखकर, क्योंकि ये मायावी तथा घमंडी है, साथ ही निरंकुश एवं परम दुष्ट भी है। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व ही कि आसुरी घड़ी आए और ये दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें, निसंदेह आप इस अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। संसार को आच्छादित करने वाली परम अंधेरी संध्या बेला निकट आ रही है, क्योंकि आप सभी आत्माओं की आत्मा है, आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। विजय के लिए सर्वोपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है। अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और प्रेम पूर्वक चितवन प्रेम पूर्व चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो भगवान बड़े हंसे देखकर ब्रह्मा जी की ओर मुस्कुराए। ब्रह्मा के नथनों से उत्पन्न भगवान उछल पड़े और अपने समक्ष विचरण करते हुए अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की टोड़ी पर अपना गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से भिड़कर भगवान की गदा अपने हाथ से छिड़ गई। तो असुर ने भी प्रहार किया तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई। घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे श्री भगवान का रोष बढ़ सके। तो इसलिए हिरण्याक्ष ने उस परिस्थिति को देखकर एकदम प्रहार नहीं कर दिया, क्योंकि निहत्ते हैं भगवान, तो उन्हें युद्ध धर्म का पालन किया। हिरण्याक्ष ने प्रहार नहीं किया और मौका दिया कि फिर से भगवान जो है फिर से अस्त्र शस्त्र उठाएं। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, तो ही श्री भगवान ने असुर की धर्मप्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तो गदा हाथ से गिर गई तो भगवान ने किसको बुलाया? सुदर्शन चक्र को बुलाया। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वह अपने वैकुंठवासी पार्षदों के सहाकार से जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले प्रत्यक्ष दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात ना थी, अतः वे चिल्ला पड़े, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, आप उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। तो देवता लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं बार बार, एक्चुअली सब घबराए हुए वास्तव में। जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुकारने लगा और अत्यंत रोष में अपनी ही होंठ चबाने लगा। भयावनी डाड़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवास में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी चिल्लाया, तुम मारे जा चुके हो, हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता। श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु को के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तो बाएं पांव से किक मारा। तो हर प्रकार का युद्ध कला का उपयोग करते हैं भगवान, मार्शल आर्ट्स, बाएं पांव से किक मारा, देखिए उन्होंने। तो ये सब तो देखिए इस प्रकार, इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के चलचित्रों में जो भी दिखाया जाता है वो वास्तव में भगवान की लीलाओं को ही दिखाया जा रहा है, विकृत रूप में भगवान की लीलाओं की ही नकल की जा रही है। अगर हम लोग वास्तव में सर्कस देखना चाहते हैं तो सर्कस भी देख सकते हैं, भगवान की लीलाओं में सर्कस भी है। भगवान जो है देखिए किस तरह से कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, ये भी सर्कस से कम तो है नहीं। और अगर आप वेट लिफ्टिंग देखना चाहते हैं तो भगवान की लीलाओं में आप वेट लिफ्टिंग भी देख सकते हैं। भगवान कृष्ण जिस तरह से गिरिराज जी को धारण करते हैं, और कौन धारण कर सकता है, और यहाँ पर पृथ्वी को धारण किया है, किस पर धारण किया उन्होंने, अपने दांतों में क्या कहते दाढ़ी में धारण किया भगवान वराहदेव ने। तो ये इससे बड़ा वेट लिफ्टिंग चैंपियन कौन हो सकता है, भगवान से बड़ा वेट लिफ्टिंग चैंपियन कोई है क्या? तो हर प्रकार की क्रीड़ा हर प्रकार का कार्यकलाप भगवान की लीलाओं में देखा जा सकता है। चोरी आप करना चाहते हैं, चोरी का दृश्य देखना चाहता है, तो भगवान से बड़ा कोई चोर है नहीं, चोरों में अग्रगण्य है भगवान कृष्ण तो है, चोरों में अग्रगण्य है। हर प्रकार के खेल हर प्रकार के कार्यकलाप जो भौतिक जगत में विकृत रूप में देखते हैं भगवान की लीलाओं में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। और भगवान की लीलाओं को जब हम देखते हैं, इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हम भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, तब भगवान ने कहा तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने की इच्छुक हो, मुझे जीतने की इच्छुक हो तो प्रयत्न करो। इन शब्दों में ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्दा। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वह वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज किसी सर्प को पकड़ ले। गरुड़ जिस तरह से सर्पराज को पकड़ लेते हैं, किस तरह से, उसी तरह से भगवान ने बड़ी आसानी से गदे को पकड़ लिया, गदा को पकड़ लिया। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। उस परम योद्धा के द्वारा बल पर फेंका गया त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। जब श्री भगवान ने चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनकी चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर शिवस्त्र का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। अब उसने क्या किया, अपनी सिद्धि का उपयोग किया और वह अदृश्य हो गया वहां से, क्यों डर गया। हे विदुर, असुर द्वारा उस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि भरा रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तो भगवान के ऊपर प्रहार तो किया उसने, लेकिन भगवान को ऐसा लगा जिसके जैसे कि उनके ऊपर फूलों की बरसात हो। जिस तरह से देखते हैं कि भीष्म पितामह ने जब बाणों से प्रहार किया था, है ना, तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी बाण जा गिरे थे, तो वहाँ वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण को भी ऐसा लगा कि जैसे किसी ने फूलों का बरसात किया हो, फूलों की बरसात किया हो। तो इस प्रकार भगवान जो है इस प्रकार स्वीकार कर रहे थे, किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से आकर पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह गिराने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। कितने भयानक दृश्य होगा, देखिए, सोच के देखिए, देवी देवता सारे कांप रहे ये दृश्य देखकर। ही अनक विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और अपना केश खोले त्रिशूल धारणी नंगी राक्षसनियों प्रकट हुई। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लग रहे थे, और वे या तो पैदल थे या घोड़े हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा तो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ हो गया। तो यो भी माया जाल जो फैला हुआ था उसने, असुर ने उसको नष्ट कर दिया। केवल कैसे, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा कंपन हुआ, उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हुआ और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो फिर से भगवान केशव के समक्ष आया और उन्हें चूर चूर करने की इच्छा से अपने बाहों से भरकर उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने भगवान को अपना बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तब असुर भगवान को कठोर मुखों से मारने लगा। कितना लंबा युद्ध हुआ देखिए आप, है ना, भगवान इतनी आसानी से नहीं मार रहे हैं और हिरण्याक्ष भी बहुत देर से युद्ध कर रहा है, और भगवान भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्त से युद्ध कर रहा हूँ, कोई साधारण जीव से नहीं युद्ध कर रहा हूँ, है ना। साधारण जीव के साथ इतना थोड़ा समय बिताएंगे और भगवान को आने की आवश्यकता भी नहीं है, है ना। भगवान जो है, अगर हम जैसे पापी जीवों को मारने के लिए अगर इच्छा भी प्रकट करें, इच्छा ही करना वहाँ उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन भगवान जो है अपने नित्य परिकरों के साथ ही लीला करते हैं। तब असुर भगवान को कठोर मुखों से मारने लगा तो भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी में उस तरह तमाचा मारा जिस प्रकार मरुद गणों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, कि कनपट्टी पे एक जोर से चाटा मारा। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, टकलू हो गया, और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। एक ही चाटे में देखो, तो ये चाटा तो बहुत पहले मार सकते थे भगवान, चाहे प्रकट जब हुए तो उसी समय चाटा मार देते, एक तमाचा मारा कनपट्टी पे। तो भगवान ने इतना समय लगाया, देखिए। उस स्थान पर भयावह दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए भूमि पर लेटे उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अभी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा भाग्यशाली मृत्यु किसी की हो सकती है। यानी कि भगवान के द्वारा मारा गया व्यक्ति जीव जो है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। लेकिन हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, इन सब के वध होने पर ये लोग भगवान के धाम में प्रवेश नहीं किए। लेकिन जब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए थे, तो शिशुपाल हालांकि वो भी, उनको भी पहले सायुज मुक्ति प्राप्त हुई थी, भगवान के शरीर में प्रवेश किए थे वो एक दिव्य ज्योति के रूप में, लेकिन बाद में फिर अंततः वैकुंठ धाम में पुनः प्रवेश किए शिशुपाल और दंतवक्र। क्योंकि बचपन से ही शिशुपाल भगवान के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे थे, भले ही वो द्वेष से कर रहे थे, लेकिन भगवान की लीलाओं का वो निरंतर गुणगान कर रहे थे। वास्तव में हमारे आचार्य ने कहा है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि शिशुपाल ने बचपन से ही, जन्म लेते ही, जब से बोलना शुरू किया, गाली देना शुरू कर दिया भगवान को, है ना। उसका जन्म सिद्ध अधिकार था शिशुपाल का, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया कृष्ण को गाली देना शुरू किया। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि एक जब जब उसने भगवान कृष्ण को गाली दी है, उसने भगवान कृष्ण का वास्तव में गुणगान किया है, और भगवान कृष्ण ने उसको गुणगान के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण से शिशुपाल और दंतवक्र जो है बाद में देखते हैं कि उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, पुनः प्राप्ति हुई। लेकिन जब जय विजय, जब वो गौर लीला में आते हैं जगाई और मधाई के रूप में, वो शाप के कारण नहीं आए, वो महाप्रभु की इच्छा से आए गौर लीला में भाग लेने के लिए। तो जय विजय की इच्छा हुई गौर लीला में भाग लेने के लिए, तो पुनः वो आए जगाई मधाई के रूप में। और जगाई मधाई के बारे में भी आप सुनते हैं, गौर लीला में कैसे हाहाकार मचाया था उन्होंने, ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने ना किया हो। चेतने भागो पढ़ेंगे तो आपको वर्णन मिलेगा। तो ये इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन दिया गया है भगवान वराह के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्याक्ष का वध जब हुआ तो हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया, और उसको भी अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया, और किस तरह से हिरण्याक्ष की तरह हिरण्यकश्यपु जो है वो भी बहुत ही शक्तिशाली बन गया। तो दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों बड़े खतरनाक थे, और ये दोनों जुड़वा जो हैं वो वैकुंठ में रहते हैं द्वारपाल के रूप में। तो ये भगवान की इच्छा से आए थे यहाँ पर, और भगवान की इच्छा से ही ये युद्ध हो रहा था, ये भगवान की इच्छा शक्ति से हो रहा था, ये भगवान की लीला थी। ये सब जो युद्ध था वो योग माया के प्रभाव से हो रहा था, योग माया के प्रभाव से हो रहा था। तो भगवान जो भी लीला करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, वो योग माया के प्रभाव से होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या कोई समीक्षा करना चाहें? ये भगवान की व्यवस्था थी, और भगवान की इच्छा से ही ये प्रकट हुए थे। जय विजय के आने के कारण केवल भगवान ही थे, भगवान की इच्छा से ही चार कुमारों ने शाप दिया था, और वो शाप तो केवल उन्होंने इतना ही दिया था कि इनको तो मृत्यु लोक में जाना चाहिए, जहाँ द्वंद है, जहाँ पे किसी को कोई शत्रु मानता है, किसी को कोई मित्र मानता है, इनको वहाँ जाना चाहिए। फिर भगवान ने जो है उसी शाप की और व्याख्या की, ये मृत्यु लोक जाएंगे, वैसे तो इनको 7 जन्मों तक वहाँ रहना चाहिए, पहले भी लक्ष्मी जी आना चाहती थी तो तब भी इन्होंने रोका था, मैं इस समय योग निद्रा में था, और अभी भी इन्होंने रोका है आप लोगों को, तो इस कारण से इनको पृथ्वी लोक में जाना होगा, ये असुर परिवार में रहें तो अच्छा है 3 जन्म के लिए, और फिर ये जल्द ही वापस आ सकते हैं मेरे पास। तो ये भगवान की स्वेच्छा से हुआ। असुरों और राक्षसों को परेशानी हुई, भगवान के जो भक्त थे भगवान की लीलाओं का वो रसास्वादन कर रहे थे। भगवान जब भी भूम लीला करते हैं तो नित्य परिकर तो साथ में आते भी हैं, साथ में वो भक्त जो अभी भी सिद्धि को प्राप्त किए हैं, साधना सिद्ध हुए हैं, वो भी इन भूम लीलाओं में प्रवेश करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद्भागवतामृत में कि जब कोई भक्त जो है सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है तो सबसे पहले वो भूम लीला में प्रवेश करता है। और वहाँ पर नित्य परिक्रमों का साथ देते हुए भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करता है। और अन्य लोग भी जो पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने हैं उनको भी सुअवसर प्राप्त होता है भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय वो भक्तों को भी दर्शन देते हैं और अभक्तों को भी दर्शन देते हैं। लेकिन भेद इतना है कि भक्त लोग पहचान जाते हैं कि भगवान हैं, और जो अभक्त हैं वो भगवान को शत्रु के रूप में देखते हैं, जो खासकर असुर होते हैं, राक्षस होते हैं। जैसे कंस ने जब युद्ध के लिए बुलाया था कृष्ण बलराम को मथुरा में, और मुष्टिक और चानूर के साथ युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध करवाया था, तो उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए नाना प्रकार के लोग आए थे, है कि नहीं। वहाँ पर ब्रजवासी सारे आए थे, वहाँ पर योगी जन भी आए थे, वहाँ पर ज्ञानी लोग भी आए थे, यानी कि निराकार निर्विशेषवादी भी आए थे, वहाँ पर हर प्रकार के लोग आए थे। और जो जिस तरह से जिस भावना से भगवान कृष्ण को देख रहा था उसी तरह से भगवान को अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। और कंस किस तरह से देख रहा था, भयभीत होकर, उसके हृदय में इतना भय था, हमेशा भयभीत रहता था वो, और भय के कारण प्रतिकूल भाव से वो भगवान का चिंतन करता था, अनुकूल भाव से नहीं। तो भगवान ने गीता में इसलिए कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य, कि जिस तरह से जो भजन करेगा उस तरह से ही मैं उसका भजन करूँगा, उसी तरह से मैं अपने आप को प्रकट करूँगा उसके सामने। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हम भक्तिनाथ ठाकुर के वो जो कथन को पढ़ रहे थे, जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं, उसमें यही लिखा हमने कि जिस तरह का भक्तों का भाव होता है भगवान भी उसी तरह का रूप धारण करके आते हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए। रही बात और लोगों को परेशानी हुई, किन लोगों को परेशानी हुई, असुरों और राक्षसों को परेशानी हुई, पापियों को परेशानी हुई, दुष्ट लोगों को परेशानी हुई, भक्तों को परेशानी नहीं हुई। प्रहलाद महाराज को कभी परेशानी नहीं हुई, भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो बहुत शांत थे वो, तो बड़े खुश हुए। बाकी और लोग जो थे, हाँ ये जरूर है कि जब देवता लोग जब प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव के दो सामने, वो जानते थे भगवान हैं, लेकिन उनका विकराल रूप देखकर उनका जो भय था और जो राक्षसों का या असुरों का जो भय था उसमें अंतर है। देवताओं का जो भय था भगवान नरसिंह को देव को देखकर, वो मर्यादा के कारण था, ऐश्वर्य भाव के कारण, उनके ऐश्वर्य देखकर, उनकी मर्यादा की भावना को देखकर वो भयभीत थे। लेकिन जो असुर और राक्षस थे वो भयभीत थे भगवान को भगवान ना मानकर अपना शत्रु मान के, इस कारण से वो भयभीत। तो भय में भी अंतर होता है ना। यहाँ पर भी भक्त लोग जब आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उन प्रार्थनाओं में ऐसा लगता है कि हम वास्तव में भक्त भी भयभीत हैं, लेकिन ऐसा भय वास्तव में भय नहीं होता है। ऐसा भय जो होता है वो मर्यादा के कारण होता है कि आप ही परम भगवान हैं, हम कुछ जीव हैं, कभी माया के प्रभाव में आ सकते हैं, हमें आप अपनी सेवा में लगाए रखिए, कहीं हम माया ना माया ना गिर जाएं, तो इस तरह का भय रहता है। लेकिन जो वास्तव में जो प्रहलाद महाराज थे, जो शांत रस में थे, वो वास्तव में भगवान का निरंतर गुणगान कर रहे थे। देवी देवता होते हैं अक्सर जो होते हैं वो सकाम भक्त होने के कारण उसमें थोड़ा उनमें थोड़ा बहुत भौतिक जगत का भय भी रह जाता है, लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त होते हैं वो जो कि शांत रस में स्थित हैं, कम से कम वो शांत रस का आस्वादन करते हैं और भगवान के ऐसे प्राकट्य से वो डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं, अभी तो भगवान का प्रहलाद महाराज गुणगान कर रहे थे, है कि नहीं। प्रहलाद महाराज तो भगवान का गुणगान कर रहे थे और उल्टा वो चिंता कर रहे थे कि इन धूर्तों और मूर्खों का क्या होगा, मुझे तो अपनी चिंता नहीं है, जहाँ तक मेरी बात है त्वत गायन क्या है, त्वत गायन महामृत मग्न चित्ता, मैं तो आपके नाम रूप गुण लीलाओं में ही मग्न हूँ जहाँ तक मेरी बात है, लेकिन मुझे चिंता केवल इन मूर्खों की है, शोचे ततो मिमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्भवतो मिमूढान, ये सब सूत्रें बड़े सुखी हैं माया के कारण, वो सूत्रें सुखी हैं, सब मूर्ख लोग हैं, मुझे इनकी चिंता हो रही है, मैं इनके कारण चिंतित हूँ, बस अपने लिए मैं चिंतित नहीं हूँ। तो भक्त लोग इस प्रकार चिंता करते हैं, दूसरों के लिए चिंता करते हैं, कि वैष्णव जो है हमेशा करुणा होती है उनके अंदर, तो दूसरों के लिए वो चिंता करते हैं, दूसरों के लिए वो भयभीत होते हैं कि इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों की कैसी रक्षा होगी, भगवान इतना विकराल रूप लेके आए हैं, इन सब का क्या होगा, आप इनकी भी रक्षा करें भगवान। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मेरे पिता को उद्धार कर दें, क्योंकि पिता कौन थे, हिरण्यकश्यपु थे। माइट इज राइट, माइक इज राइट।
आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, श्री लालनाथ ठाकुर का दुर्भाव है, तो साल में एक ही बार आता है, आदर भाव का आता नहीं है, तो साल में एक दिन ऐसा है उनको याद करने का। तो लालनाथ ठाकुर के बारे में प्रभु जी ने तो पढ़ के सुना है सामाजिक पुस्तक से, और कुछ बातें और भी महात्मा प्रभु ने एक बार बताई थी जो बड़ी रोचक बातें उनके बारे में, उनको मैं बताना चाहूँगा। तो हल्दीराम ठाकुर श्री रामा सखा के अवतार हैं, जो बारह गोपालों में से बहुत ही प्रमुख हैं श्री रामा सखा। तो जब नित्यानंद प्रभु खड़ा में रहते थे तो उनको जो है जब पुत्र होता था तो हल्दीराम ठाकुर जो है वहाँ आते थे। हल्दीराम ठाकुर की विशेषता ये भी थी कि किसी को प्रणाम करते थे और वो उतना योग्य नहीं होता था उनका प्रणाम स्वीकार करने के, तो वो जो है मर जाता था। तो बहुत खतरनाक थी, ये प्रणाम करें वो प्रणाम ना करें, वो स्वीकार कर लें इनका प्रणाम, तो वो जो है उसका बहुत अनिष्ट होता था। तो नित्यानंद प्रभु के कोई भी पुत्र हो तो वो आदत है और जैसे प्रणाम करें वो पुत्र मर जाए, तो ऐसे कई पुत्र मर गए नित्यानंद प्रभु। तो हल्दीराम ठाकुर से जो है मतलब सब लोग बहुत भयभीत हो गए, तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है कि तो अब जो है इस बात जो है जो वीरचंद्र प्रभु का जन्म हुआ नित्यानंद प्रभु के घर में, तो सबने जो है मतलब आप बड़ी कड़ी व्यवस्था कर दी कि हल्दीराम ठाकुर को जो है बुलाना नहीं है। तो सब लोगों ने मतलब बिल्कुल निश्चित कर दिया कि उनको नहीं, उनको नहीं बुलाया जाए। तो हल्दीराम ठाकुर ने सुना कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुआ है तो नहीं बुलाया गया, तो विचार करते हैं कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ कि आदरपूर्वक बुलाया जाए, मैं जाऊँगा तो ग्वाला हूँ, तो ग्वाले को जाए बिना बुलाए भी जाते हैं, तो मैं सुबह जाना चाहिए। जब वो जा रहे थे तो गंगा नदी जो है पड़ी रात में, तो गंगा नदी को जो है पार करने के लिए नाविकों से कहा, बात किया कि हमको गंगा नदी पार करना है, बोले आपका नाम क्या है, बोले हल्दीराम ठाकुर। तो डर गए तो अपने नौ गए सब लोग आदि नौ गए नहीं आपको जो है गंगा जी पार नहीं कर देंगे। तो बोले अच्छा तो गंगा जी पार करने नहीं तो फिर तो चलो मैं पार करता हूँ गंगा नदी। तो अपनी धोती जो है उन्होंने घर की पानी में तो तैरने लगी उसमें बैठ कर दो गंगा जी पार। आप आए नहीं तो उनके घर में आए तो सब लोग डर गए, हल्दीराम ठाकुर आ गए, छोटा आ गए, तो निकन को मिले तो बोले उन्होंने सुना है कि आप जो है पुत्र का जन्म हुआ है, तो बोले कि हाँ जन्म तो हुआ है लेकिन आप प्रश्न मत करो, आपको भोजन करा देते हैं, भोजन कर लो। बोले ठीक है भोजन कराओ। तो 300 आदमी का भोजन गांव में चलते पूरे गांव भर कर दिया, 3,300 जितने भी लोग तो पूरा भोजन जो खा रहे आप लेकर लोग कहते हैं क्या कर दिया तुम्हें, बोले हम तो ग्वाले हैं हम जितना खाएंगे उतना हम उतना खिलाओ, जितना खाएंगे उतना खाएंगे। बोले तो पूरे गाँव तो मैंने भोजन खा लिया, अब जो है पूरे गाँव में कैसे खिलाएंगे भोजन, बोले सब भोजन रखा हुआ है, जब देखा तो सब पूरा भोजन जो है रखा हुआ है। इसके बाद फिर प्रभु से जो है कहते हैं कि हमें पुत्र के दर्शन कराओ, तो बोले आप क्यों जो है पुत्र के दर्शन करना चाहेंगे, वो आप जो है मार डालते हो, आप जो है नित्यानंद प्रभु के पुत्र को मार डालते हो। बोले ना ये मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जो है नित्यानंद प्रभु को जो है पुत्र की परीक्षा करता हूँ कि नित्यानंद प्रभु का जो पुत्र है वो उनके पुत्र होने लायक है नहीं है, इसकी परीक्षा करता हूँ, तो आप पुत्र का दर्शन कराओ। तो वीर चंद्र प्रभु को जो है जब लाए हैं तो विष्णु के अवतार है, जो दक्षा विष्णु के अवतार है, जो लोग थे ना हल्दीराम ठाकुर का प्रणाम स्वीकार कर सकते थे। तो बालक को जो है जब लाया गया माता की गोद में तो इन्होंने जो है प्रणाम किया और खड़े हुए, तो बालक जोर से हंसा, तो ये जो है जब निश्चित हुए बालक की जो सकती है तो हंस रहा है, तो फिर प्रणाम किया, फिर बालक और जोर से हंसा है ना, फिर चकित हुए, फिर प्रणाम किया, फिर बालक और जोर से हंसा है ना, इस तरह से जो है उन्होंने जो है परीक्षा की कि जो है बालक जो नित्यानंद प्रभु का है वो ऐसा ही होना चाहिए जो कि विष्णुदत्त हो। इस प्रकार से हल्दीराम ठाकुर का जो है आज के दिन विशेष रूप से हमें स्मरण करना चाहिए, और फिर विशेष रूप से प्रभु ने सुनाया क्योंकि हाथ में शामुक होता था, शामुक को मार खा के कोई ट्रांसफर
हरे कृष्ण।